नर्वसनेस। आहान एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे भी बेटा ही होगा। ये सोचकर अचानक रौनक के दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगता है। अब आगे। वहीं अरमान का दिल कर रहा था कि वो आगे बढ़कर आहान की बेटी को अपनी गोद में ले ले, लेकिन चाहकर भी वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं कर पा रहा था। आस्था, जो अरमान की फीलिंग को अच्छी तरह समझ रही थी, अब देर न करते हुए उसने उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में लिया और सीधा अरमान की गोद में दे दिया और मुस्कुराते हुए अरमान से बोली, बेटी चाहिए थी ना आपको, लीजिए, हो गई, ये रही आपकी बेटी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान ने अचानक गहरी नजरों से आस्था की ओर देखा। अरमान ने आईब्रो चढ़ाई और आश्चर्य से सोचा, इस लड़की को कैसे पता चला कि आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है। अब अरमान और आस्था दोनों ही मिलकर लाड जताते हुए उस प्यारी सी बच्ची को देख रहे थे, जो कसमसाते हुए अपनी किमटिमाती हुई आंखों से उन्हें मासूमियत से देख रही थी। आज अरमान को आस्था की नज़दीकियां इरिटेट नहीं कर रही थीं। अरमान को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि आखिर मुझे हो क्या गया है, इस लड़की का मेरे पास खड़े रहना मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तभी अचानक वहां अंश के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी और उसे हंसता हुआ देखकर सभी लोग मुस्कुरा दिए थे। वहीं आहान, जो अभी तक शब्दों में सिमटा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ना तो वो हंस रहा था, ना रो रहा था, बस सिंपल तरीके से एकटक अपनी बेटी को देखे जा रहा था। आहान अभी कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। आहान का रिएक्शन देखकर रौनक का मन उदासी से भर गया। वो थोड़ा घबरा गई और नम आंखों से मन ही मन सोचने लगी कि आहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी बेटी हुई है। शायद अरमान भाई और टाइगर भाई तरह आहान को भी शुरू से बेटा ही चाहिए था, क्योंकि वो उसे रेसर बनाना चाहता था, उससे बॉक्सिंग कराना चाहता था। रौनक को लग रहा था आहान ने अपने बेटे को लेकर कितने ही सारे सपने देखे थे, वो सपने आज उसकी बेटी पैदा होने से टूट गए हैं। अब जैसे ही रश्मि ने रौनक की आंखों में आंसू देखे तो वो पूरी तरह से घबरा गई और परेशान होकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ रौनक, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? जैसे ही रश्मि ने चिंता जताई, वैसे ही रौनक हड़बड़ाई हुई आवाज में रश्मि को जवाब देते हुए बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। लेकिन आस्था को रौनक का इस तरह से रोना खटक गया था। वहीं नानी माँ, जो इस वक्त टाइगर और मारिया के साथ थी, वो उनके बेटे को गोद में लेकर लाड जताते हुए बहुत प्यार से निहार रही थी, क्योंकि टाइगर और मारिया का बेटा एकदम फॉरेनर जैसा हुआ था, बेहद खूबसूरत, गोल मटोल, भूरे बालों वाला। इस तरह का बच्चा देखकर नानी माँ को बहुत अच्छा लग रहा था और वो एक्साइटेड होकर बोलती हैं, मारिया बेटी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा बच्चा तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये बच्चा कितना प्यारा है। ये बोलकर नानी माँ बार बार उस बच्चे की बलाइयां ले रही थी। वहीं टाइगर के चेहरे पर भी आज छोटी सी मुस्कुराहट थी। बाप बनने के बाद उसके दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। दादाजी, अभिमान जी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। सबकी आंखों में खुशी की जबरदस्त चमक थी। वहीं ध्रुव, आकाश, सुमित आगे बढ़कर टाइगर और आहान को बार बार गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। हंसी खुशी के इस माहौल के बाद सभी लोगों ने घर जाने का डिसीजन लिया। तब तक आस्था ने कुछ नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि किस तरह से बेबी के वेलकम की तैयारी करनी है। ये कहकर आस्था ने जल्दी ही एक छोटा सा प्लान बना लिया था और वंशिका को उसने सारी चीजें समझाकर थोड़ा पहले भेज दिया था। क्योंकि रौनक और मारिया दोनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो उन्हें कुछ घंटे हॉस्पिटल में रखने के बाद घर भेज दिया जाना था। बच्चा और माँ दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज हुए हमले की वजह से वो सब उनकी सुरक्षा के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मारिया और रौनक को हॉस्पिटल से घर ले जाने का फैसला किया। तब तक इस कुछ घंटों के टाइम में आस्था और वंशिका अच्छी तरह से सारी चीजों की प्लानिंग करना चाहती थी। वहीं राधिका की आंखें आज थोड़ी सी नम थी। जिस तरह से बच्चों को लेकर सभी लोग खुशी जता रहे थे, माँ और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, ये नज़ारा देखकर राधिका के दिल को अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो भी माँ बनना चाहती थी। माँ की फीलिंग कैसी होती है वो भी सब फील करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वहीं सुमित बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि सुमित को बच्चा ही नहीं चाहिए था। फिलहाल राधिका ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया। उसका मन आज रौनक और मारिया के लिए बेहद खुश था। अपनी आंखों में खुशी की चमक लिए वो चाहत भरी नजरों से बच्चों को निहार रही थी। सुमित ने तिरछी नजरों से राधिका की आंखों में आए आंसुओं को देख लिया था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिलहाल नानी माँ बच्चों के नाक, कान, गला बड़े ही प्यार से अच्छे से चेक करने लगती हैं। वो अपने बड़े होने का पूरा फर्ज निभा रही थी, बच्चों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद नानी माँ ने बच्चों को नहलाकर अच्छे से कपड़े पहनवा दिए थे। उन्होंने अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया था। वहीं आहान ने तो जैसे चुप्पी साध ली थी। थोड़ी देर पहले बच्चों को लेकर वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था, उसका एक्साइटमेंट सब खत्म सा हो गया था। ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रहा था। आहान की चुप्पी भांपते हुए आस्था ने उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर उसने रौनक की ओर तिरछी नजरों से देखा। वो जानती थी ये सही वक्त नहीं था उनसे कोई सवाल करने का। उसने बच्ची को अरमान की गोद से लेकर एक बार फिर रौनक के बराबर में लिटा दिया था। वहीं आहान अपनी बेटी को दोबारा गहरी नजरों से एकटक देखने लगता है। एक बार फिर वहां अंश के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी। उन दो छोटे छोटे बच्चों को देखकर अंश काफी खुश हो रहा था। कोई भी बच्चा भले कितना छोटा हो, पर दूसरे बच्चों को देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अंश के हंसने की आवाज सुनकर सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जो वहां के माहौल को हल्का और फ्रेश बना रही थी। अंश की प्यारी सी आवाज सुनकर आहान ने अगले ही पल आगे बढ़कर अंश को गोद में ले लिया था, जिसे देखकर रौनक को और भी ज्यादा बुरा लगा। वो उदास मन से सोचने लगी कि शायद आहान अब उसे और उसकी बेटी को नहीं अपनाएगा। कहीं ना कहीं रौनक को अपना पास्ट याद आने लगा, किस तरह उसके पिता ने बेटी होने पर उसकी माँ को घर से धक्के देकर निकाल दिया था और कितनी मुश्किलों से उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था। ये सब सोचते हुए अचानक रौनक थोड़ा परेशान हो गई थी। और अचानक रौनक के दिमाग में एक बात आई, कहीं आहान भी उसके साथ ऐसा कुछ ना कर दे। लेकिन आहान तो उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ हमेशा मस्ती मजाक करता हुआ आया है, पर बेटी होने पर कहीं आहान उसे घर से बाहर ना निकाल दे। ये सब सोचते हुए वो अचानक से नर्वसनेस फील कर रही थी। उसे एक अलग तरह की इनसिक्योरिटी और घबराहट महसूस होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर आज आस्था काफी खुश नजर आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अरमान ने अगले ही पल सोचा, ये लड़की मुस्कुरा रही है तो मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, जबकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरमान को थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन वो चुप रहा और वो वहां से सीधा बाहर जाकर बैठ गया। अरमान को वहां से जाते हुए देखकर आस्था भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई और उसके पास जाकर आहिस्ता से बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसकी इस बात पर अरमान बेपरवाह अंदाज में पूछा, बोलो क्या कहना है तुम्हें। आस्था अगले ही पल बोली,
मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अपने बेटे की केयरटेकर बनाकर यहाँ रखा हुआ है, लेकिन आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरा भी बेटा है। सो मैं चाहती हूँ कि अंश को लेकर मैं कुछ दिनों के लिए गांव चली जाऊँ। आस्था के मुंह से ये बात सुनकर अरमान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वो छुंछलाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम, गांव? कौन सा गांव? किसका गांव? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान सिंघानिया के बेटे को कहीं ले जाने की बात सोचने की भी? ये कहते हुए अरमान ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए थे। वहीं आस्था अपनी जीप को दांतों तले दबा लेती हैं और एकदम से परेशान होकर सोचने लगी, उप्स, मैं कहना क्या चाहती थी, लेकिन मैंने ये क्या कह दिया? उफ़ो, मेरी जुबान ऐसे कैसे फिसल गई? लेकिन कहीं ना कहीं अरमान का रिएक्शन देखकर आस्था को थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराई और अगले ही पल उसने उसे बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, वैसे भी मैं आपको कुछ खास पसंद आती नहीं हूँ और अंश मेरा भी बेटा है, तो मैं अपने बेटे को जहाँ मर्जी वहाँ लेकर जा सकती हूँ, और वैसे भी ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आस्था के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुँचा। उसने गुस्से में आस्था की बाँह कसकर पकड़ ली और दांत भींच कर बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने के बारे में कहने की भी? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जब तक मेरा बेटा थोड़ा समझदार नहीं हो जाता तब तक तुम उसके साथ रहोगी, उसके बाद तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए फेंक दूंगा। इतना बोलकर अरमान वहां से चला गया। अरमान के मुंह से निकले शब्द सुनकर आस्था को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानती थी कि अरमान को किस तरह हैंडल करना है। आस्था ने एक झटके से अपना होश संभालते हुए अरमान के कदमों दूर जाते हुए देखा, फिर उसने तुरंत एक कॉल मिलाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर संजना इस वक्त गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान आस्था का हाथ थामकर उसके साथ चुपचाप चला जाएगा। कहीं न कहीं ये दृश्य संजना को भीतर तक जलाने के लिए काफी था। उसे आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने सोचा कि अरमान ने उसे जो काम दिया था, अविनाश रघुवंशी के साथ मीटिंग फिक्स करने का, उसकी मीटिंग उसे कल के लिए कन्फर्म करवा लेनी चाहिए, और बातों ही बातों में उसे अविनाश रघुवंशी को ये भी बता देना चाहिए कि एक मामूली सी लड़की ने इस तरह से उनका मेंशन यूज़ करने की हिम्मत की और वहां जाकर त्यौहार मनाया। यही सब सोचते सोचते उसने माथे पर रखा कि मिस्टर रघुवंशी पता नहीं किस स्वभाव के होंगे और आस्था को कितना ज्यादा भला बुरा कहेंगे, और इसी बहाने अरमान सिंघानिया को जल्द ही ये भी पता चल जाएगा कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए अरमान के साथ थी। ये सब सोचते हुए संजना ने अपना प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर जब से अरमान के ऑफिस से निकला था वो अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था, और वहीं आकाश के पास एक रहस्यमयी फोन आता है जिसे सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अब तक अरमान हॉस्पिटल से जा चुका था, लेकिन आस्था जो अभी भी वहां मौजूद थी, जैसे ही उसने आकाश को कॉरिडोर में इतना परेशान देखा तो वो तुरंत उसके पास गई और एकदम से बोली, क्या बात आकाश भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तब तक सुमित, ध्रुव और आहान भी वहां आ गए थे, जबकि बाकी सदस्य रौनक और मारिया के साथ मौजूद थे। रौनक और मारिया को एक ही रूम में रखा गया था और बाकी सब उनका ध्यान रख रहे थे। अब आहान भी वहां आकर आकाश से पूछता है, क्या बात है आकाश भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आहान के सवाल करने पर आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा, बात ही कुछ ऐसी है, आइए मेरे साथ। ये बोलकर वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के VIP रूम में चले गए, जहां उनकी मर्जी के बिना किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। फिलहाल वहां जाकर आकाश ने सब लोगों को एक नजर देखा और बोलना शुरू किया, अबीर सिंह राठौर बर्बाद हो चुका है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।